ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीने में नेपाल से होने वाले निर्यात में 57.2% से बढ़ोतरी होने का राष्ट्र बैंक का तथ्यांक। सन 2025 में नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर 4.4% रहने का एशियाई विकास बैंक का प्रक्षेपण। रसुआ में निर्मित 78 मेगावाट की संजेन खोला जल विद्युत परियोजना का ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने किया उद्घाटन। जलाशय युक्त परियोजना को प्राथमिकता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है, मंत्री खड़का का कथन। कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 2082 को लक्षित कर कोशी पर्यटन वर्ष शुरू और गजा शहर के पूर्व में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 फिलिस्तीनी की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। आर्थिक वर्ष 2081-82 के 8 महीनों में नेपाल से कुल वस्तु निर्यात 57.2% बढ़ गया है। नेपाल राष्ट्र बैंक द्वारा आज जारी 8 महीने के देश की आर्थिक स्थिति से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार इस अवधि में निर्यात बढ़कर 1,58,17 करोड़ पहुंच गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इस तरह के निर्यात में 4.0% की कमी आई थी। गंतव्य के आधार पर भारत, चीन और अन्य देशों की ओर निर्यात क्रमशः 82.5%, 8.8% और 2.9% बढ़ा है। वस्तुगत आधार पर सोयाबीन तेल, पॉलिएस्टर धागा, चाय, पार्टिकल बोर्ड, इलायची आदि वस्तुओं का निर्यात बढ़ा है, जबकि पाम तेल, जिंक शीट, अदरक, तैयार कपड़े, जूस आदि वस्तुओं का निर्यात घटा है। 8 महीनों में नेपाल में वस्तु आयात 11.2% बढ़कर 11,45,57 करोड़ रुपए पहुंच गया है। पिछले वर्ष की समान अवधि में इस तरह के आयात में 2.7% की कमी आई थी। 8 महीनों में देश का कुल वस्तु व्यापार घाटा 6.2% बढ़कर 9,87,39 करोड़ रुपए पहुंच गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि देश में वर्तमान में राजनीतिक स्थिरता की स्थिति है, इसलिए उन्होंने आर्थिक विकास के लिए निवेश करने में आत्मविश्वास दिखाने का आग्रह किया है। नेपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के 74वें वार्षिक आमसभा के उद्घाटन सत्र को आज संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने विज्ञान तथा प्रविधि के उपयोग के साथ साथ प्रतिस्पर्धी और रचनात्मक तरीके से उद्योग व्यापार को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आज के कृत्रिम बुद्धिमत्ता का भी सदुपयोग करके उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री ओली ने याद दिलाया कि सरकार द्वारा आर्थिक विकास के लिए लाए गए अध्यादेशों को चैम्बर जैसी संस्थाओं का समर्थन मिला है और उन्होंने कहा कि सही और गलत के आधार पर समर्थन या विरोध करने की ये शैली प्रशंसनीय है। इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान देने वाले उद्यमियों और व्यवसायियों को प्रधानमंत्री ओली द्वारा पुरस्कार प्रदान किए गए, साथ ही चैम्बर की स्मारिका का भी विमोचन किया गया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से नेपाल दौरे पर रहे भारत के कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज शिष्टाचार भेंट की। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल विम्सटेक के कृषि मंत्रियों की बैठक के लिए नेपाल आए मंत्री चौहान ने प्रधानमंत्री निवास बालवाटार में प्रधानमंत्री ओली से मुलाकात की। मंत्री चौहान ने नेपाल और भारत के बीच पारस्परिक संबंधों के विभिन्न आयामों पर चर्चा करते हुए दोनों देशों को मिलकर कृषि के आधुनिकीकरण, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए काम करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय समझौतों और संयुक्त कार्य समूहों को गति के साथ आगे बढ़ाना चाहिए और छोटी मोटी समस्याओं को छोड़कर महत्वपूर्ण मुद्दों पर समान चिंता के साथ गतिशील तरीके से काम करने के लिए वो तैयार है। अर्घखांची जिले की पाणिनी गांवपालिका में 2 दिवसीय ऐतिहासिक पाणिनी तपोभूमि सम्मेलन शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस सम्मेलन में महर्षि पाणिनी के नाम पर नामित पाणिनी क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सरकार का ध्यान जाने की प्रतिबद्धता जताई। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि पाणिनी क्षेत्र को एक धार्मिक और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए सरकार तत्पर है। आयोजक समिति ने बताया कि विश्व की प्राचीन संस्कृत भाषा के व्याकरण की उत्पत्ति स्थल, ऐतिहासिक पुण्यभूमि और तपोभूमि पाणिनी को विश्व के सामने पहचान दिलाने के लिए पाणिनी तपोभूमि सम्मेलन आयोजित किया गया है। ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने कहा कि अब लोड शेडिंग नहीं होगी। रसुआ में निर्माण संपन्न हो चुके 78 सांजेन खोला जल विद्युत परियोजना का आज उद्घाटन करते हुए मंत्री खड़का ने ये बात कही। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *1415 हेस डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कोशी प्रदेश सरकार ने वर्ष 2082 को लक्ष्य बनाकर कोशी पर्यटन वर्ष की शुरुआत की है। कोशी प्रदेश के विकास, समृद्धि और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस पर्यटन वर्ष का शुभारंभ किया गया है। तीन जूरे मिल के क्षेत्र कोशी प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल से पर्यटन वर्ष का उद्घाटन करते हुए उप प्रधान तथा शहरी विकास मंत्री प्रकाश मान सिंह ने कहा कि ये नेपाल की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करेगा। कार्यक्रम में वन तथा वातावरण मंत्री एन बहादुर शाही ने कहा कि देश के पर्यटन को बढ़ावा देने में कोशी प्रदेश पर्यटन वर्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। रमणीय कोशी किनारे के साथ मनाए जा रहे इस पर्यटन वर्ष के लिए प्रदेश सरकार ने वर्ष 2082 के लिए 82 पर्यटन स्थलों की सूची पहले ही तैयार कर ली है। नेपाल का सबसे निचला स्थल केचना कवल से लेकर विश्व का सबसे ऊंचा शिखर सगरमाथा माउंट एवरेस्ट तक कोशी प्रदेश में ही पड़ता है। विश्व के 10 सबसे ऊंचे हिमालयों में से 5 कोशी प्रदेश में ही स्थित है। नेपाल स्वास्थ्य अनुसंधान परिषद का 11वां स्वास्थ्य एवं जनसंख्या वैज्ञानिकों का शिखर सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। सम्मेलन की तैयारियों से संबंधित आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परिषद के कार्यकारी सचिव डॉ. प्रमोद जोशी ने बताया कि सम्मेलन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य और जनसंख्या पर आधारित अनुसंधान को बढ़ावा देना, प्रमाण आधारित नीतियों और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना तथा वैज्ञानिक शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के बीच सहयोग को सुदृढ़ बनाना है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्यकर्मियों ने स्वास्थ्य सेवा आयन 2081 संशोधन की मांग करते हुए आज तीसरे दिन भी अपना प्रदर्शन जारी रखा। स्वास्थ्यकर्मियों के प्रदर्शन के कारण प्रदेश के स्वास्थ्य संस्थाओं की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। नारायणगढ़ बुटवल सड़क परियोजना ने दाउन्ने सड़क खंड में आज से दैनिक 4 घंटे सवारी आवागमन बंद होने की जानकारी दी है। नारायणगढ़ बुटवल सड़क निर्माण परियोजना के सूचना अधिकारी शिव खनाल के अनुसार दाउन्ने खंड सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे तक बंद किया जाएगा। चैत 31 गति तक यही समय लागू रहेगा, जबकि वैशाख 1 गति से रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक सड़क बंद किया जाएगा। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार ने अछाम के बानीगढ़ी जयगढ़ गांवपालिका स्थित जयगढ़ बाजार में रात में लगी भीषण आग से प्रभावित लोगों को तत्काल 50 लाख रुपए की सहायता देने का निर्णय किया है। सुदूर पश्चिम प्रदेश के मुख्यमंत्री कमल बहादुर शाह ने बताया कि अछाम में आग से प्रभावित परिवारों और व्यवसायियों को प्रारंभिक चरण में 50 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। बानीगढ़ी जयगढ़ बाजार में कल रात लगी आग से 7 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति नष्ट हो गई है। अछाम के प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक ईश्वरी प्रसाद भंडारी ने बताया कि आग की वजह से जयगढ़ बाजार के 27 घर जलकर नष्ट हो गए। उन्होंने बताया कि कल शाम 7 बजे शुरू हुई आग को लगभग 5 घंटे बाद काबू में लाया जा सका। प्रदेश सरकार ने हालात का जायजा लेने के लिए सामाजिक विकास मंत्री और आंतरिक मामला मंत्री को राहत सामग्री के साथ जयगढ़ भेजने का भी निर्णय किया है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने वर्ष 2025 में नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर 4.4% रहने का अनुमान लगाया है। एडीबी ने आज एशियाई डेवलपमेंट आउटलुक 2025 रिपोर्ट जारी करते हुए एशियाई क्षेत्र की आर्थिक वृद्धि दर 4.9% और नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर 4.4% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। एक स्थानीय अस्पताल का कहना है कि गजा शहर के पूर्व में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम 29 फलिस्तीनी मारे गए हैं। हमास संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी के अनुसार मंगलवार की सुबह लड़ाकू विमानों ने सैजिया के पड़ोस में अल हवासी मस्जिद के पास इलाके को निशाना बनाया। एजेंसी ने कहा कि इस हमले में मारे गए लोगों में 8 बच्चे भी शामिल हैं और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 7.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चालू आर्थिक वर्ष के 8 महीने में नेपाल से होने वाले निर्यात में 57.2% से बढ़ोतरी होने का राष्ट्र बैंक का तथ्यांक। सन 2025 में नेपाल की आर्थिक वृद्धि दर 4.4% रहने का एशियाई विकास बैंक का प्रक्षेपण। रसुआ में निर्मित 78 मेगावाट की सांजिन खोला जल विद्युत परियोजना का ऊर्जा जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने किया उद्घाटन। जलाशय युक्त परियोजना को प्राथमिकता के साथ सरकार ने आगे बढ़ाया है, मंत्री खड़का का कथन। कोशी प्रदेश सरकार द्वारा 2082 को लक्षित कर कोशी पर्यटन वर्ष शुरू और गजा शहर के पूर्व में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 फलिस्तीनी की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।